क्या होनी चाहिए इंडिया की आइडियल प्लेइंग 11 वर्सेस साउथ अफ्रीका है धर्मशाला? क्या रोहित और शिखर बनाते हैं आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर T20 आईज? और क्या शुभमन गिल को मिलना चाहिए मौका खिलाफ साउथ अफ्रीका इन द टेस्ट? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आपकी वाणी। और जैसा प्रॉमिस किया था यूट्यूब से इस बार हमने लिए हैं ज्यादा सवाल। तो पहला ही सवाल मुकुंद अग्रवाल यूट्यूब की, क्या इंडिया की प्लेइंग 11 होनी चाहिए? देखिए अभी हमने पिच नहीं देखी है, मैं जा रहा हूं, मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मे बी आई विल बी ऑन द वे टू धर्मशाला। तो पिच देख के पता चलता है कि आप फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाएं, स्पिनर ज्यादा खिलाएं, क्योंकि हार्दिक वापस आ गए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि हार्दिक का थर्ड सीमर, दो सीमर आप जरूर खिलाएं, उसके साथ आप स्पिनर्स में कृणाल पंड्या बॉक्स इन टू द साइड, मे बी राहुल चाहर को आप मिस कर जाएंगे, या फिर वॉशिंगटन सुंदर चाहर में से हो सकता है आप एक ही गेंदबाज को खिला पाए। सो परमिटेशन कॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा जहन में रखने पड़ेंगे। बल्लेबाजी में मनीष पांडे की जगह मैं श्रेयस अय्यर को देखना चाहता हूं पर्सनली। बाकी बैटिंग ऑर्डर तो एकदम सॉर्टेड है, तो वहां कोई ज्यादा बदलाव की गुंजाइश मुझे तो नजर आती नहीं। बट देन दैट्स व्हाट आई फील कि शिखर, देन यू गॉट रोहित, यू गॉट कोहली, यू गॉट श्रेयस अय्यर, यू गॉट ऋषभ पंत, यू गॉट आप कृणाल पंड्या को जरूर खिलाएं, पंड्या दोनों हार्दिक पंड्या को जरूर खिलाएं, तो आपकी बैटिंग में गहराई हो जाती है। फिर बाकी फास्ट बॉलर्स में मैं कहूंगा दीपक चाहर जरूर खेलें, नवदीप और खलील में से यू कैन पिक वन। खैर ये तो बात हुई इस सवाल की। अगला सवाल आया है, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, ये देवम चौबे जी का सवाल है, ये भी यूट्यूब से है। ये क्या इंडिया फ्रेश प्लेयर्स की तरफ देखना शुरू करेंगी फॉर द T20 वर्ल्ड कप विद रिगार्ड्स टू महेंद्र सिंह धोनी? देखिए पहली बात तो हमें ये पता नहीं है कि क्या धोनी वहां होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, ये जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है या फिर ये लॉन्ग टर्म विजन है टीम का कि धोनी द कीपर टीम का हिस्सा नहीं है। देखिए अभी तो उन्होंने खुद को ही अनअवेलेबल घोषित किया हुआ है, लेकिन काफी लंबा अंतराल हो गया ना, ODIs तो अब दिसंबर में मिलेंगे। क्या बांग्लादेश के खिलाफ वो खेलेंगे? अगर नहीं तो फिर क्या ऋषभ पंत के ऊपर ही दाम लगाता जाएगा भारत, या फिर ईशान किशन और संजू सैमसन की तरफ भी देखेगा? आई थिंक नेक्स्ट टोर ये जो बांग्लादेश भारत आएगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि धोनी का रोल क्या होने वाला है, क्योंकि धोनी तब तक तो उपलब्ध हो ही जाएंगे अगर अवेलेबल है और टीम उनको पिक नहीं करती है, या कहें सेलेक्टर्स नहीं पिक करते, कप्तान उनको नहीं चाहते, तो फिर इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग अहेड, अदरवाइज धोनी में स्टिल बी इन द रेकनिंग, वी शैल फाइंड आउट। कनिष्क जोरी ये ट्विटर से सवाल है कि रोहित शिखर के आइडियल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है T20 में वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए? पर्सनली आई एम नॉट 100% सर्टन। रोहित शर्मा यस, शिखर धवन 50-50, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये तीन T20 शिखर धवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कि अगर वो अच्छा करेंगे तो वो बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते नजर आएंगे, वरना KL राहुल टीम में है, वो बाहर बैठे रहते हैं, तो अब उनको ओपन कराना चाहेंगे। अब आप कहेंगे मैं KL राहुल की तरफ बायस्ड हूं, लेकिन गुरुजी बहुत कम ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ाए, KL राहुल इज वन ऑफ देम। टेस्ट, वन डे, T20 आए, तीन सेंचुरी, तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाला ये होनहार है बल्लेबाज। फिर ये सवाल आता है शुभमन गिल को लेकर, अमरदीप झा यूट्यूब से पूछते हैं, यूट्यूब पे सवाल डालते हैं कि क्या उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मयंक की जगह पे मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एकदम मतलब गलत सवाल मेरे विचार में। आप शुभमन गिल को खिलाना चाहते हैं, मैं भी खिलाना चाहता हूं, लेकिन मयंक अग्रवाल के एक्सपेंस पे, ओपनर्स एंड डाइपर्स थोड़ी ना है कि बार बार बदलते जाओ। तो मेरे विचार में आपने राहुल को ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है, तो उनको तो वापस जाके अपना फॉर्म रीगेन करना ही है। रोहित के साथ आप एक नए ओपनर के रूप में टेस्ट कर रहे हैं, एक नया एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब मयंक को भी आपने अगर फटाफट से बाहर निकाल दिया, फिर कहां आपकी होने वाली है ओपनिंग सेटल्ड साझेदारियां? सो दैट्स माय प्रॉब्लम। तो आई पर्सनली फील कि आपको मयंक अग्रवाल को खिलाना चाहिए, रोहित शर्मा को भी तीन टेस्ट मैच दीजिए अगर वो खेलते हैं तो शुरुआत से ही, शुभमन गिल विल हैव टू वेट इज व्हाट आई फील। अनुराग यादव यूट्यूब से सवाल पूछते हैं कि ये विश्व भर में ओपनर्स को हुआ क्या है यार, ये इतने ओपनर्स लगातार फेल रहे हैं। इनफैक्ट डेविड वॉर्नर तो पहले ओपनर बन गए जिनके 8 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं एक टेस्ट सीरीज में। वेल, उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप सामने वाली टीम में देखें तो हालत सब जगह ऐसी है, इंडिया की देख लीजिए, साउथ अफ्रीका की देख लीजिए, ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे, ये थोड़ी समस्या जरूर है। अब इसके लिए आप टेक्निक को थोड़ा सा दोषी ठहरा सकते हैं, और जो T20 खेलने वाले ओपनर्स है ना, वो जो टेस्ट में भी ओपन करते हैं, तो उनके लिए तो ये टेक्निक का क्वेश्चन सही है, लेकिन जो सिर्फ टेस्ट में ओपन करते हैं, दिमुथ करुणा रत्ने, वो अच्छा करते हैं। तो जो खाली टेस्ट वाले हैं ना, जो बिल्कुल सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं ओपनर्स, तो वो ठीक कर रहे हैं। और वहां मुझे याद आता है यार, मुरली विजय ने भी ऐसा कुछ बहुत खराब तो किया नहीं था, हमने उनको भाग का रास्ता दिखा दिया। टेक्निक में डिटीरियरेशन हुआ है, डिफेंसिव टेक्निक में डिटीरियरेशन हुआ है, थोड़ी गिरावट आई है, अग्रेसिव प्ले में थोड़ा सा सुधार हुआ है। वेल यू गिव सम यू गेट सम, तो ये भी वो फेज है जहां फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। मगर आप थोड़ा विश्व भर में थोड़ा नजर फैला के देखें तो आप पाएंगे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, यानी कि नई गेंद से कठिन सवाल, बल्लेबाजों की टेक्निक थोड़ा सा गई है नीचे, ऐसा कोहली ने भी कहा। भाई जसमीन, ये अच्छा सवाल है, करण सरंग पानी जी का यूट्यूब से ये सवाल पूछा उन्होंने कि क्या टीम्स को बायलैटरल सीरीज की जगह वो ट्राई नेशन, फोर नेशन, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये जो बायलैटरल ओडीआई टी20आई श्रृंखलाएं होती है ना, मेरे तो बिल्कुल बल्ले नहीं पड़े। मुझे लगता है कि अब इस फॉर्मेट का थोड़ा समय पीछे गुजर गया है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं है, क्यों देखेंगे आप, क्यों देखूंगा मैं, ये एक सवाल रहता है। तो ओडीआई के बीच में वो बोरिंग ओवर्स भी रहते हैं। अगर मल्टीनेशन टूर्नामेंट हो ना तो हर मैच में कॉन्टेस्ट जरूर होता है, कॉन्टेस्ट चाहे हो या ना हो। एशिया कप अच्छा था, वर्ल्ड कप भी अंत में अच्छा ही नजर आया, तो जो मल्टीनेशन टूर्नामेंट है मुझे बहुत पसंद है। तो ट्राई नेशन, फोर नेशन, आप मल्टीनेशन, मतलब कितने भी बड़े टूर्नामेंट कीजिए, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन ये जो बायलैटरल सीरीज है ना, ये थोड़ा सा अपना चार्म खो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अमित जी का सवाल है ये, और ये सवाल अच्छा सवाल है कि फैब फोर बैटिंग में तो हम कहते हैं कौन कौन है वैसे फैब फोर में, जो रूट को अभी भी हम हिस्सा दे रहे हैं या उनको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। स्मिथ, विलियमसन और कोहली तो पक्के हैं, रूट 50-50, बट देन लेट्स गेट सीरियस। इन्होंने पूछा है कि बोलिंग में आप कौन कहेंगे फैब फोर, लेट्स ओनली लुक एट द फास्ट बॉलर्स। मैंने कहा ना, नजर फेरा के देखिए, आप पाएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। इस पे वैसे एक सेपरेट आकाशवाणी बनती है, वो है कि फैब फोर ऑफ फास्ट बोलिंग अटैक, ट्रेंट बोल्ट आउटस्टैंडिंग, पैट कमिंस फिनोमिनल, जसप्रीत बूम बूम बुमराह को आप उस लिस्ट में जरूर करेंगे शामिल। तो ये तो हो गए बुमराह एंड कगिसो रबाडा, भाई कैसे बोल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। तो ये मेरे चार हुए, कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस एंड ट्रेंट बोल्ट, दीज आर माई फैब फोर फास्ट बॉलर्स अक्रॉस द ग्लोब। वैसे सेकंड ईयर भी खराब नहीं है गुरु जी, आप अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे शमी भी अच्छा करते हैं, आप पाएंगे जो आर्चर का भी थोड़ा सा ये पनप रहे हैं, उनके पास तो हेजलवुड, स्टार्क, पैटिनसन, अच्छे खासे तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। तो फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा सा एरा मुझे अच्छा लग रहा है, बल्लेबाजी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, बट देन दीज आर माय फैब फोर। आपको क्या लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी भी बजाई दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह जो आप देखने वाले ना वो होगी टीवीएस यूरोप रिप्रेजेंट्स आकाशवाणी, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टी20 है। धर्मशाला में करूंगा ये वाली शूट मैं, आकाशवाणी जो आप कल देखेंगे, कल करिए जरा इंतजार, नोटिफिकेशन घंटी, ऐसे नहीं ये आपके लेफ्ट पे, तो नोटिफिकेशन घंटी आप यहाँ बजा दीजिए, और बाद के कुछ वीडियो जैसे आकाशवाणी जरा चेकआउट करनी है तो वो इस तरफ के थोड़े वीडियोज भी आप देख ही सकते हैं।